तो श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग दसम स्कंद में हैं, रेगुलर पाठ है, एक एक श्लोक के साथ। इस बार अलग से कक्षा नहीं रखने की जरूरत पड़ी क्योंकि चैप्टर ही कृष्ण जन्म से संबंधित है। और रोहिणी में कथा हो रही है हिजलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के द्वारा, तो उसमें वो इसी लीला को पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो सप्ताह रखने की जरूरत ही नहीं थी, आपके यहाँ तो महीने चल रहे हैं और लगभग एक दो साल तक यही चलता रहेगा तो पूरा पंजाबी भाग वृंदावन में रहेगा, कृष्णमय। तो दसम स्कंद का पहला अध्याय और श्लोक संख्या है 33। हमारे पीछे बोलने प्रयास कीजिए। युवाम वे ब्राह्मण अधिष्ठो प्रजा संगे यदा तत् सत्रियम इंद्रियग्रामम ते पाथे परमम तप। लाइट कम है या मुझे कम दिख रहा है अचानक? युवा में ब्राह्मण दृष्टो प्रजा सर्गे यदा तत सत्रियमुन्द्रिया ग्रामम ते पाथे परमं तपः। युवां वे ब्राह्मण दृष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः संयमेन्द्रिया ग्रामं ते पाथे परमं तपः। युवां वे ब्राह्मण दृष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः संयमेन्द्रिया ग्रामं ते पाथे परमं तपः। युवा मे ब्राह्मणो दिष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः ग्रामं। संयेन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तपः। युवां मे ब्राह्मणो दिष्टो प्रजा सर्गे यदा तथा संयमेन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तपा। माताजी, युवां वे ब्राह्मणो दिष्टो प्रजा सर्गे यदा तथा संयेन्द्रियं ग्रामं ते पाथे परमं तपः। युवां वे ब्राह्मण दृष्टा ब्राह्मण दृष्टो धन्यवाद। शब्दार्थ, युवा तुम दोनों प्रश्नी तथा सुतपा वे निसंदेह ब्राह्मणा अधिष्ठो ब्रह्मा की आज्ञा से प्रजा सर्गे संतान उत्पन्न करने में यदा जब तथा तत्पश्चात संयम पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए इंद्रिय ज्ञामम इंद्रियों को तेपाथे की परमम महान तपह तपस्या। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की, जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। तात्पर्य, यहां पर यह आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों का किस तरह उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। यह नियंत्रण गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। भारत में विविध यांत्रिक विधियों से गर्भ निरोध करने का पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, किंतु जन्म पर कभी यांत्रिक विधि से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसा कि भगवद्गीता 13:9 में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग, ये इस भौतिक जगत के प्रमुख दुख हैं। लोग जन्म को नियंत्रित करना चाह रहे हैं किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में असमर्थ हैं। और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते। दूसरे शब्दों में, जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रित करने से सुलभ नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भाधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, तभी जन्म दर पर नियंत्रण हो सकता है। जैसा कि भगवद्गीता 7:11 में कहा गया है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि, अर्थात जो काम यौन धर्म के विरुद्ध नहीं है वह भगवान का स्वरूप है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम संसाधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। बहु दुख भाजः, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है वह अनियंत्रित यौन में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोके जाने की बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तुल जाए तो वह तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक कि वह उस संतान को भक्त न बना सके। श्रीमद्भागवतम 5:5:18 में कहा गया है, पिता न सस्यात्, जब तक मनुष्य अपनी संतान को मनुष्य से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ ना हो तब तक उसे पिता नहीं बनना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? उत्तरदायी पिता कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतानें नहीं उत्पन्न करता। लोगों को गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वे अपने संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसी संतानें संपन्न की जा सकें जो भक्त बने और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार वर्तमानी, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां निरर्थक हैं। कोई संतान उत्पन्न करे या नहीं, किंतु कुत्तों और बिल्लियों की जैसी जनसंख्या से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्तों बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या कर भक्तों को जन्म दें। इससे उनके जीवन सफल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अर्थात अभी कृष्ण का जन्म हुआ है, तो मैं इससे पहले बता रहे हैं भगवान ने उत्तर दिया, तो जन्म लेने के बाद अब अपने माता पिता को बता रहे हैं कि आप लोगों का मैं यहां पर किस प्रकार से आया हूं, कि आपने सूतपा और प्रश्नि के नाम से बहुत समय पहले तपस्या की थी, इसलिए मैं आपके घर अवतरित हुआ हूं। भगवान का जन्म हुआ है और भगवान ने बोलना शुरू कर दिया और अपने आने का रीजन और माता पिता का भी भविष्य देख के बता रहे हैं और उनका भूतकाल बता रहे हैं, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं जो भगवान को समझते नहीं है और उस पर टिप्पणी करते हैं। कई लोग तो भगवान को का साकार रूप मानते ही नहीं, और यहां पर साक्षात भगवान जो अवतरित हुए हैं वो अपने माता पिता को अपने जन्म होने का रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश पर प्रश्नि और सूतपा ने तपस्या की थी, देवताओं के 12,000 वर्षों तक खतरनाक तपस्या की। तपस्या में जंगलों में रहे, कंदमूल खाए और पत्ते जो गिरते थे उसको खाकर जीवन जिया, घोर तपस्या। और फिर वरदान में क्या मांगा कि क्योंकि भगवान जब कहते हैं ना हमारा भगवान जैसा पुत्र हो, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि भगवान से अच्छा तो कोई व्यक्ति है नहीं, गुणवान उनसे कोई है नहीं, तो जब भगवते भगवान से भगवान आप जैसा पुत्र हो तो भगवान कहते हैं भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, भगवान का टाइप एक ही है, उस दूसरा उस नहीं रीक में एक नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होकर भी कोई दूसरा नहीं आ सकता, असम ऊर्ध्वा, ना उनके समान कोई है। तो बोल दिया कि आपके जैसा चाहिए, अब जैसा कैसे हो सकता है, जैसा नहीं है। इवन विष्णु के जितने भी रूप हैं वो भी एक जैसे नहीं है, हर एक के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग ढंग से रखा है, इसलिए उनकी पहचान अलग है, उनके कार्य अलग है। तो ना तो उनके जैसा कोई है और ना उनसे बढ़कर कोई है, तो जब जैसा तक नहीं कोई पहुंच पाया तो बढ़कर कैसे पहुंचेगा। तो वैसे इसलिए भगवान को अजन्मा कहते हैं, अजन्मा का मतलब ये अजन्मा पे भी कितने दिन तक प्रवचन हो सकता है, क्योंकि कई संस्थाओं में कई धर्मों में बोलते हैं भगवान अजन्मा है, कितनी सुंदर क्वालिटी है भगवान की, और उसके बावजूद हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं उनके गुणों के, उनके क्रियाओं के, उनकी लीलाओं पर चर्चा करने में, कितना कंट्राडिक्शन है नहीं लोगों के लिए जो लोग मानते नहीं भगवान का, कि भगवान तो जन्म ही नहीं लेते। अब जन्म नहीं लेते तो सारी कहानी खत्म हो गई। जैसे जो मायावादी हैं वो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, अब जब रूप नहीं है तो फिर सब कुछ ही खत्म हो गया, तो फिर भगवान के विग्रह भी नहीं है, भगवान खाते भी नहीं है, भगवान चलते भी नहीं है। तो ये जो भजन है कभी राम बन के कभी श्याम बन के जैसे लोग आते हैं, या ऐसे बुलाते नहीं हो, खिलाते नहीं हो गोपियों की तरह, गोपियों के जैसे खिलाते नहीं है, माँ यशोदा के जैसे खिलाते हैं, कितने भजन बनाए भगवान के, एक एक क्रियाकलाप पे भजन बने हुए और दुनिया अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही है। तो और हम देखते हैं कि जो ये कीर्तन नहीं म्यूजिक, इसका तानसेन इत्यादि जो बड़े बड़े सम्राट हुए हैं संगीत के, ऐसे राग छेड़ते थे, राग की वर्षा हो जाती थी, बादल आ जाते थे, इतनी पवित्रता होती थी उनके जीवन में कि साक्षात बादल आकर बरसने लगते थे, अग्नि लगा देते थे संगीत गाकर। अब भी लगती है अग्नि, अगर कोई अच्छा गा रहे तो दूसरों को अग्नि लगती है कि मेरे से अच्छा कैसे गा रहा है। और बरसात बाहर नहीं होती, अभी भी छलकते हैं आंसू छलकते हैं। तो ऐसे सम्राट हुए, लेकिन जब मुस्लिम अक्रांतों का, मुगलों का यहां पर राज था, उन्होंने ऐसे सब लोगों को अपने राज्य में रख लिया, कभी हमारे लिए लगाइए, तो ये सारी परंपरा फिर उनके लिए गाना और या संगीत के सारी शिक्षा उन तक सीमित रह गई। और आज आप बात करते हैं जब कोई सीखने जाता कोई हारमोनियम इत्यादि वोकल, तो हम देखते कि अच्छे अच्छे माहिर जो संगीतकार हैं वो कौन है, वो मुस्लिम परिवारों से हैं, घरानों की बात करते हैं हम तो इस घराने से हैं, उस घराने से हैं, और वो सिखाते हैं संगीत। बट इन्होंने सीखा था किनसे जो पहले अच्छे संगीतकार हुए हैं, अभी ये उनके पास मोनोपोली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि संगीत के ऊपर पकड़ है इस समय मुस्लिम कम्युनिटी की। लेकिन जब संगीत को वो इतने अच्छे ढंग से सीखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ता है, संगीत का उद्गम कहाँ से हुआ ये जानना पड़ता है, संगीत बना किस लिए ये जानना पड़ता है, उससे किसका ग्लोरिफिकेशन होता है वो जानना पड़ता है। तो हर जगह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ब्रज के संगीत चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं भगवान को रिझाने के लिए, गोपी कृष्ण एक एक लीला उस पर खाली एक भजन पे गा रहे हैं। अभी हमारे देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, नाम है फारूख अब्दुल्ला, तो उनका एक वीडियो देखा, उसमें वो राम का भजन गा रहे हैं, राम मेरो राम, और बड़ा अच्छा मतलब गा रहे हैं और राम पे गा रहे हैं, क्योंकि संगीत आता थोड़ा बहुत, तो वो पूरा का पूरा सुर भी लगा रही है तो राम की लीला के ऊपर लगा रहे हैं। वाह उस्ताद वाह, याद आ रहा कुछ क्या, कौन सी चाय, ताज, हाँ हाँ ताज, तो जो ताज वाले चाय वाले क्या ना मतलब इनका डॉक्टर जाकिर, नहीं जाकिर हुसैन है ना, तो ये तबला बजा बजा के इन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त करी। और तबला बजा बजा के, अब अकेले थोड़ी बजाएंगे खाली तबला, कोई कोई गाएगा तो बजाएंगे, तो बड़ा कीर्तन सुना इन्होंने बजाया, कहीं ना कहीं भजन सुने गाया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संगीत जानता है और वो अल्लाह को ग्लोरीफाई करना चाहता है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है उसमें, क्योंकि अल्लाह को तो निराकार बता दिया। अब निराकार के पास एक्टिविटी नहीं है, उनकी सुंदरता नहीं है, उनके बाल नहीं है, है ना, सुनहरा रंग नहीं है, उनके कपड़े नहीं पहनते, वो खाते नहीं, वो पीते नहीं, चलते नहीं, है ना, तो चाल के ऊपर कुछ नहीं है, और फिर उनके साथ कोई गोपियां वगैरह नहीं है, तो इसलिए उनको बस सूखा सूखा कीर्तन करना पड़ता है, या मौला या अल्लाह या मौला, बस खत्म है कि नहीं। अगर फिल्मों में एक सॉन्ग सुनेंगे तो कभी इन्हीं शब्दों पर खत्म कर देते हैं, उसी में जो कला दिखानी है, गले की हरकत दिखानी है, उसी में दिखाते हैं, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि अल्लाह और राम और कृष्ण एक ही हैं, तो फारूक अब्दुल्ला की तरह फिर वो क्या गाएंगे, राम कि नहीं। तो संगीत इत्यादि इन सब का उद्गम जब देखते हैं कि वास्तव में भगवान है, फिर उनको रियलाइज होता है। जैसे हम वो क्या नाम है, जाकिर हुसैन की बात कर रहे हैं, तो उडुपी कृष्ण में वो दर्शन करने गए भगवान का, क्योंकि इतना सुना है भगवान के विषय में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आकर्षित हो जाता है उनके रूप से, उनकी लीलाओं से। तो जाकिर हुसैन गए, जब उन्होंने कथा सुनी कि एक ऐसे भक्त हुए जिनको दर्शन नहीं करने का अनुमति थी अंदर, या नहीं कर पा रहे थे, बाहर मंदिर के अंदर नहीं बल्कि पीछे खड़े होकर वो विलाप कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे भगवान का। तो भगवान ने क्या किया, अपने को उल्टा कर लिया, पलट गए भगवान, और जो दीवार पे छेद कर दिया ठा, और वो जो भक्त था उसने कहा आवाज आई है कहां से, ये तो देखा दीवार पे छेद हो गया, तो अंदर देखते हैं भगवान कृष्ण खड़े और उसी तरफ दर्शन दे रहे हैं। तो वो कहां पर है, उडुपी कृष्ण, जिनका हम दर्शन करने जा। आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो फ्रंट से एंटर करते हैं, लेकिन घुसते पीछे से हैं, और फिर उसी छेद से सब लोग दर्शन करते हैं। आज तक भगवान उल्टे ही खड़े हैं तब से, और उस भक्त का अनुगमन करते हुए सब लोग पीछे से दर्शन करते हैं। तो जब ये लोग सुनते हैं, जब भगवान का गुणगान करते हैं अपने गानों में भजनों में, तो इनका आकर्षण बढ़ जाता है भगवान से। तो ये जाकिर हुसैन जी भी गए और उन्होंने वहां पर भगवान का दर्शन किया, पंडितों को प्रणाम किया, कुछ देर तक भगवान का दर्शन किया, ये भगवान है जो अपने भक्त के लिए पलट गए। तो इतनी लीलाएं हैं भगवान की, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ये विग्रह हमने नहीं मोड़े, ये विग्रह हमने कुछ नहीं करे, ये सेल्फ मैनिफेस्ट। अभी जैसे 40 वर्षों से विग्रह भगवान के आदि वरदराज जल के अंदर, तो दुनिया जा रही है देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए। तो इतनी सारी लीलाएं हैं, लेकिन फिर मायावादी और ऐसी कम्युनिटीज हैं कुछ जो कहती नहीं भगवान का रूप ही नहीं है, कितना बड़ा जो है क्या कह सकते हैं इसको, मिसफॉर्च्यून है लोगों का जो भगवान के रूप को नहीं मानते। और यहां भगवान प्रकट होके अपनी माता और पिता को उनके भूतकाल की स्थिति बता रहे हैं कि भैया आपने खूब तपस्या की थी और कहा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए हमने कहा हम खुद ही चलते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम आए हैं, और इसे पिछले अवतारों में भी आए और अभी उपस्थित हैं आपके सामने। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर आपने तपस्या की, इसका मतलब स्पिरिचुअल अथॉरिटी हुआ करती थी, जो वर्णाश्रम धर्म में, अब तो इसकी आवश्यकता पड़ती है बहुत अधिक, अब तो इस कलयुग में तो बिल्कुल नहीं पड़ती, आजकल तो जो इस्तेमाल नहीं करते लोग इस चीज को, बट स्टिल ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त हुआ था आपको और उनके कहने पर आपने तपस्या की थी। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी बोलती थी इवन इस चीज के लिए कि अब आपको ऐसी तपस्या करनी है और ऐसे मनोभाव से ऐसी याचना करनी है, तब जाके आपके यहां पर पुत्र की उत्पत्ति होगी, वैदिक काल के टाइम की बात कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा चतुर्वर्णामया सृष्टम गुण कर्म विभागिशा, मैंने इन चार वर्णों और आश्रमों की स्थापना की ताकि जो ये 84 लाख योनियों में जो लोग घूम रहे हैं, और जब मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य बनने के बाद इन चार वर्णों राष्ट्रों में जब रहेंगे ये लोग और धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अकॉर्डिंगली जीवन जिएंगे तो ये मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए चार वर्णों राष्ट्रों का इन सोशल और स्पिरिचुअल ऑर्डर्स को स्थापित किया ताकि वो पशु जो इतने जानवरों की योनि से घूमता घुमाता अब मनुष्य बनाए, वो इन संस्कारों के द्वारा इन वर्ण और आश्रमों में स्थित रहकर अपने नियत कर्मों को करता हुआ धर्म अर्थ काम मोक्ष करे और फिर भगवान को प्राप्त कर ले, मोक्ष इत्यादि प्राप्त कर ले। इसलिए इस सब की रचना हुई थी। लेकिन हम देखते हैं जैसे शास्त्र कहते हैं कि आज बहुत बड़ी संख्या है मनुष्यों की, है ना, हम लोग पता चलता है स्टैटिस्टिक्स द्वारा भी और हर जगह दिखाई देता है, इतनी भारी संख्या में लोग हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से पता चलता है कि ये जो दो पैर वाले भी लोग हैं ये भी पशु के ही समान है, क्योंकि इनका जीवन यापन ठीक उन्हीं उसी तरह हो रहा है जैसे पशुओं का होता है। पशु आहार निद्रा भय और मैथुन में रत रहता है पूरा जीवन, इन्हीं चारों चीजों की चिंता करता है, और मनुष्य जिसे हायर इंटेलिजेंस मिला है वो भी अपना पूरा जीवन इन चार चीजों की ही चिंता करता है, इन्हीं के लिए योजना बनाता है और इसी में रमण करता है, रमण भी करता है आहार निद्रा भय और मैथुन में। तो बताते हैं जिस प्रकार उड़ीसा में धाम है क्योंकि जगन्नाथपुरी, तो देवताओं को ऊपर से लोग नीचे दिखते हैं तो सब चार भुजाओं में दिखाई देते हैं, मुक्त आत्माएं ऊपर से, ऐसी देवता जब इन साइड पर देखते होंगे तो दो पैर वाले भी चार पैर वाले दिखाई देते होंगे है कि नहीं? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन लगे हुए लोग, तो जो ये कर रहा है तो शास्त्र समन्वय में इत पशु भी नर, ऐसा नर जो है पशु के समान है जो केवल इन चार चीजों की चिंता कर रहा है, क्या आहार निद्रा भय मैथुन। उधर लोग चिंता जगन्नाथ जी का करते हैं तो चार हाथ दिखाई देते हैं, इधर लोग भोग का चिंतन करते हैं तो चार पैर दिखाई देते हैं तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए भगवान ने रचना करी किस चीज की, चतुर्वर्णा में भगवान ने कहा कि इसलिए मैंने ये बनाया। और तपस्या की जब बात करते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए भैया तपस्या की बात की जा रही है, तो जब जन्म लेता है शिशु तो उससे पहले और उसके मरने के बाद तक कई प्रकार के संस्कारों की संतुति की गई है कि भैया इन सब संस्कारों से, क्योंकि पशु जीवन में संस्कार इत्यादि नहीं होते, इसलिए पहले ब्राह्मण लोग जो हैं वो इन संस्कारों को कराने में बड़े रुचि लेते थे सब लोगों के लिए, ताकि इनको अपलिफ्ट कर सकें, इनको मुक्त करा सकें, तो ब्राह्मणों का कार्य होता था ये। और इस प्रकार जो लोग जन्म लेते थे समाज में तो वो लोग किसी न किसी, जैसे जो भगवान ने सिस्टम बनाया था ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, ब्रह्मचार्य स्कूल्स होते थे तो उसमें जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरुजन उनकी नेचर को देखकर उनको अलग रखते थे और शिक्षा उसके हिसाब से देते थे, और शिक्षा में भी क्या देते थे 20 साल 25 साल तक केवल यही शिक्षा होती थी वेदों का अध्ययन, उन संस्कारों को अर्जित करना, जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार। 25 साल तक बच्चा यही पढ़ता था। जब उसको ब्रह्मचार्य का पालन करना आ जाता था, वेदों का अध्ययन समझ जाता था, जीवन का लक्ष्य समझ जाता था, तो उसके बाद गुरु से आज्ञा प्राप्त करकर वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करता था। और ये सब संस्कारों की जानकारी अब है उसको। तो गृहस्थ में जाने के बाद उसे जानकारी थी कि क्या करना है उसको। विवाह संस्कार होता था, और जब संतान की उत्पत्ति के लिए भी वो गुरु से या जिनके शेल्टर में उनसे पूछ कर कार्य करते थे वैदिक काल में। और यहां आज प्रभुपाद जी फोर्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपना मुख्य टॉपिक रखा गर्भाधारण संस्कार, कि लोग इस संस्कार का कैसे पालन करते थे। मनोवृत्ति तैयार की जाती थी, हस्बैंड एंड वाइफ तपस्या करते थे, इंद्रियों पर संयम रखते थे, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, कैसे जप करना है, सब जानते थे। और जब मनोवृत्ति पूरी तरह डेवलप हो जाती थी, फिर गुरु के आदेश के द्वारा सही दिन और सही समय देखकर, इसका भी बड़ा शास्त्रों में जो है वर्णन मिलता है कि सही दिन भी होना चाहिए, उसका दिन शास्त्रों में लिखे हैं, और सही समय भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी समय किसी भी दिन, जैसे आजकल तो इस चीज का पालन नहीं किया जाता, तो इसलिए बोला कि सब चार पैर वाले दिखाई देते हैं, क्योंकि चार पैर वाला ना समय देखता है ना दिन देखता है, और वो कहीं पर भी भोग शुरू करता है, ना कोई योजना बनाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 3 बार इस प्रपट में बोला, आजकल के लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चों को पैदा कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह। मानसिकता भी कुत्ते बिल्लियों की, ना समय देखना, ना योग्यता देखनी, ना दिन देखना, केवल भोग मानसिकता के द्वारा संतानों को संसार में ला रहे हैं। और इस प्रकार समाज में संख्या बढ़ रही है किनकी, कुत्ते बिल्लियों की। इसीलिए पूरा संसार, पूरा समाज उद्वेगित रहता है हमेशा। आप देखिए, कभी थोड़ा गौर कीजिएगा, बाहर खड़े होके, अपने घरों के बाहर खड़े होके आप पशु को देखिए, उसके इलाके में कोई आ जाए हल्का सा दूसरा पशु, उसकी बाउंड्री मालूम है उसको कहां तक है, वो वहां जाके मलबल त्यागा था, उसके एंटर नहीं, यहां से इधर नहीं, उधर से उधर नहीं, वो फेंसिंग है उनकी। हमको तो कांटे वाली तार लगानी पड़ती है, उनका सब सेटअप, गली नंबर कौन सी उनकी अपनी है। और एक व्यक्ति को गलती से एंटर कर जाए अंदर, फिर आप देखिए क्या होता है वहां पर, है ना। तो इस प्रकार पूरे समाज में हम देखते हैं आज, गाड़ी से गाड़ी लगना कुछ वो हो जाए, कोई किसी की अधिकार क्षेत्र में पहुंच जाए, कोई किसी का कुछ थोड़ा सा ले ले, कोई किसी को हल्का सा कुछ बोल दे, और फिर वो लोग उसी तरह लड़ते हैं जैसे कि हम गलियों में देखते हैं। इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्र, इसलिए प्रभुपाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते। आपने बिल्ली को लड़ते देखा है? कुत्तों को तो देखते होंगे, बिल्लियों को भी। तो ये सब मनुष्य के अंदर भी ये संस्कार आ गए, क्योंकि वो संस्कार छोड़ दिए इसलिए संस्कार आ गए। तो गर्भधारण संस्कार, तपस्या त्याग किया जाता था, मनोवृत्ति तैयार की जाती थी। उसके बाद जैसे प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया, 5वें स्कंध का 5वां अध्याय का 18वां श्लोक, गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्, देवम न सस्यात् और पति न सस्यात्। कह रहे नाम उच्चेत समुपेत्य मृत्यु। अगर आपके पास मनुष्य देह है और अब आपको संतान उत्पन्न करनी है, तो बताया जा रहा है कि अगर आप जो मनोवृत्ति तैयार कर रहे हैं, उसका भाव यह होना चाहिए कि जिस संतान को हम घर पर लाएंगे, वो संतान इसलिए ला रहे हैं ताकि 84 लाख में तो बहुत से जीव घूम रहे हैं, तो वो संतान जो हमारे घर में आएगी तो उसके कई प्रयोजन होंगे। पुत्र आएगा घर पर तो वह हमें पूत नाम के नरक से बचाएगा, हमारे जो फोर फादर्स हैं उनके लिए यज्ञ इत्यादि करेगा, पिंडदान इत्यादि करेगा, और उनको गए हुए मृत हमारे पूर्वजों को भी जो है उनका भी उद्धार करेगा, और फिर भगवान का भक्त बनेगा, ये भाव से करते थे। और 84 लाख योनियों में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बच जाएगा। तो ऐसी मनोवृत्ति तैयार कर वो संतान लाते थे कि इसलिए संतान लानी घर में। इसलिए तपस्या करते थे। आजकल के युग में अगर ऐसी बातें कोई सुन ले, आजकल की पीढ़ी के लोग सुन ले, जैसे मुझे याद आ से 20-25 साल पहले जब भक्तों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और कोई बात हुई तो एक ने कहा, प्रभु जी क्षमा करना, मेरे से अपराध हो गया। तो उसे सर पीटा, अरे अपराध हो गया, क्राइम हो गया, कांड हो गया। क्योंकि अपराध तो बाहर के क्षेत्र में, अपराध का मतलब क्या है, 370 अपराध लग गए, धारा लग गई, ये लग गया है ना। तो यहां वैष्णव का हल्का सा टच हो गया, पैर थोड़ा प्लेट टच हो गई, तो कहते हैं क्षमा करना मेरे अपराध के लिए। अपराध? तो वो डर गया, कहता अपराध कर दिया, अपराध हो गया, मेरे से अपराध हो गया। वैसे अगर बोल दे तपस्या करनी है, ये सब काम करने के लिए, संतान उत्पन्न करने से पहले तपस्या करनी है, मनोवृत्ति तैयार करनी है, गुरु की आज्ञा लेनी है, पागल हो जाएगा वो तो, ये क्या करवा रहे हो। कुत्ता बिल्ली सोच सकते हो, कुत्ते बिल्ली को आपको भैया पूजा पाठ कर, तपस्या कर, त्याग कर, वो क्या करेगा, वो मल त्याग के चला जाएगा। तो कितना बड़ा गैप है वैदिक संस्कृति में और ये सो कॉल्ड मॉडर्न संस्कृति में। ये भारी भरकम लोग ट्रेन भरकर, फ्लाइट भरकर, बसे भरकर नरकों की तरफ जा रहे हैं, पशु योनियों में जा रहे हैं, और वैदिक संस्कृति में हर व्यक्ति धाम जाता था, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था। अर्जुन ने लड़ने को मना कर दिया, अर्जुन ने कंसन देखिए, ये द्वापर युग की बात कर रहे हैं, 5000 साल में, मैं लड़ने से मना कर दिया। क्यों? कहते कि इतने सारे क्षत्रिय खड़े हैं, अगर मैं इनका वध कर दूंगा तो इनकी सारी पत्नियां क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, और स्त्री को हमेशा शेल्टर में रहना चाहिए। तो जब उनके पास शेल्टर नहीं होगा तो क्या होगा, वर्ण संकट शुरू हो जाएगा, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए या तो विवाह ऊपर नीचे करेंगे। पहले तो विवाह के लिए भी गुण मिलाए जाते थे और जाति इत्यादि देखी जाती थी कि किस कुल के हैं, तो ये नहीं देखेंगे, और फिर कुछ भी होगा और वर्ण संकट होगा, इंद्र तृप्ति के लिए लोग इधर उधर मुंह मारेंगे, और फिर जो संतानें उत्पन्न होंगी, क्योंकि उस समय इस तरह कंट्रासेप्टिव के चक्कर नहीं था, 5000 साल पहले तो बस भोग था, मतलब कोई कुछ भी करेगा तो संतान उत्पन्न होगी। तो कहते जो समाज संतान उत्पन्न होगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, और ऐसे संतानें बाहर आएंगी, तो पूरा का पूरा समाज दूषित हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कोई पिंडदान नहीं करेगा, ऊपर से पूर्वज भी थाड़ थाड़ करके नीचे गिरेंगे दोबारा आके, कौन करेगा भी, टाइम ही नहीं है। आजकल तो बोलते हैं अग्नि जल रही होती है, कहते पंडित थोड़ा जल्दी करना, टाइम नहीं बिताया जाता, 15-20 मिनट आग लगते ही भागते हैं लोग, कहते हैं घास का तिनका तो यूं फेंके और जाएं, फोन बज रहे होते हैं। 18 दिन 17 दिन 13 दिन का ये कोर्स होता था, ये किसी की मृत्यु के पश्चात, अभी तो शॉर्टकट, बताओ जी एक दिन में क्या होता है, 4 दिन वाला होता हर जगह, शरीर पूरा नहीं बनता, सब कुछ करना शुरू कर देता व्यक्ति। अरे 10 दिन तक तो उस व्यक्ति के लिए सारा कुछ किया जाता, घर में अनुष्ठान इत्यादि किया जाता, जिससे कि उसके उसके लिए शरीर तैयार हो, जिससे उसने चलना है आगे, नरकों की यात्रा करनी है या आगे जहां भी जाना, उसके लिए शरीर चाहिए। और नरक जाते हुए अगर तो उसने पूरे जीवन में कुछ किया है लोगों के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन है ना, परोपकार के लिए मिला था, अगर कुछ किया है तो ठीक है, नहीं तो नंगे पैर ले जाते रेत से, कुत्ते पीछे काट रहे होते हैं और हंटर पड़ रहे होते हैं, इस तरह से लेके जाते हैं, कोई शेल्टर नहीं मिलता उसके लिए, शेड कि भाई अब कभी नंगे पैर चलिए और गर्मी लग रही हो तो आप ढूंढते हैं कहां पैर रखूं, है कि नहीं, ऐसा कोई शेड नहीं देंगे, कोई प्याऊ पे पानी नहीं पीने देते, कोई खाने का डोसा वगैरह, इडली डोसा सस्ते में कोई नहीं खाने देगा, कुछ नहीं, मारते रहेंगे आगे, क्यों भाई, किसको, अच्छा कुछ लोग खा भी रहे होते हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई ठंडा पानी पी रहा है, पेड़ के नीचे खड़ा है, फिर उसकी खाने का फिर पिटाई होती, फिर आगे ले जाते हैं, कहते हैं इनको तो खिला रहे, मुझे क्यों नहीं खिला रहे, कहते भैया जब मनुष्य देह मिला था तब तूने कोई ऐसा उपकार का काम किया ही नहीं था, ना किसी की अन्न से मदद करी, ना किसी की धन से मदद करी, ना वस्त्र से मदद करी, ना जूते चप्पल दिए, ना प्याऊ खुलवाया, ना ये किया, तो इसलिए तेरे को ऐसे ले जा रहे हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत किया था इसलिए कर रहे हैं। एक बार हुआ ऐसे ही, एक व्यक्ति इतना पापी था, इतना कंजूस कि वो कुछ नहीं देता था किसी को, मिलते हमें आजकल कहीं मिलते, तो वो बहुत कंजूस था, उसकी भी मृत्यु हो गई, सब छोड़ के मर गया एकदम, ले जा तो सकते ही नहीं था, इतना कंजूस कि अपना बुखार ना दे किसी को। तो वो व्यक्ति मृत्यु के बाद उसको नरकों में खूब यातना मिली, खूब मार पिटाई चल रही है और बेचारा रो रहा है। खैर सभी रो रहे होते हैं, उसको ज्यादा था क्योंकि बहुत उसने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया था, दूसरे पर उपकार नहीं किया था। पांचवें स्कंद के 28वें अध्याय में लिखा है कि जिसने केवल अपने लिए जिया, परिवार के लिए जिया, अपने लिए खाया, दूसरों को धोखा दिया और कुछ नहीं किया अच्छा काम, तो वो भी नरकों में जाता, तो लिखा है शास्त्रों में। इसलिए वो गया नरकों में, इतना रोया मुझे बचा लो, मुझे कर दो, तरस आ गया भगवान को, आगे तरस ही आगे भगवान का, यार ये तो बहुत पिट रहे, तो बहुत बुरी स्थिति है इसकी। तो चित्रगुप्त को फोन करते हैं भगवान, कहते हैं भाई जरा बताओ इसका क्या है, ऐसा सीन लंबा समय हो गया, काफी टाइम हो गया, ये तो निकल ही नहीं पा रहा है यहां से, क्या इसने ऐसा किया, कोई अच्छा काम है इसके, इसमें लिखा है कि नहीं, थोड़ा स्वर्ग भी भेज दो उसको। कहते महाराज कंजूस था, इसने कुछ नहीं किया अच्छा, दूसरों का छीने ही खा लिया इसने जीवन। कहते नहीं महाराज एक निकला है, आखिरी में निकला है, अच्छा काम भी निकला। कहते क्या है, कहते नहीं सड़ा हुआ केला किसी को दान किया था, सड़ चुका था तो उसको लगा मैं तो खा नहीं सकता हूं, इसने कैसे दे दिया था। कहता चलो इसको पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं, इसको यार स्वर्ग भेज देते हैं। तो भगवान ने कहा सीढ़ी भेज दी नरक में कि चल चढ़ जा तू, तेरे को तूने एक केला दान किया था चित्रगुप्त ने कहा, तो जा तो स्वर्ग की झांकी मारा जाए। तो तुरंत भागा, कहता जी बच गया, छुट्टी मिल गई, तुरंत सीढ़ी पे चढ़ने लगा, सीढ़ी देखते दूसरे भी चले गए, कहते जी हम भी जितने थे, उसने लात मारी नीचे नीचे चल, सीढ़ी मेरे लिए आई है नीचे चल। भगवान ने कहा भैया ये तो निकम्मा आदमी, यहां पर भी नहीं समझा कि देने का क्या फायदा है और यहां इनको लाते हमारा सीढ़ी गायब हो, धड़ाम से नीचे गिर गया। कहता तू आ ही नहीं सकता यार, तेरे बस की नहीं। तो अगर मनुष्य जीवन प्राप्त कर कर व्यक्ति ने कुछ नहीं किया यहां पर, है ना, पशु के भांति जिया, तो कोई फायदा नहीं उसका जीने का। तो बताते हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर किस तरह की चेतना होनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने जन्म मृत्यु से अपने पुत्र को बाहर नहीं निकाल पाया तो कुछ नहीं किया, फिर गलत काम हो गया, उससे पाप हो गया। एक और संख्या बढ़ाई जाओ कुत्ते बिल्लियों की संख्या, अब जितने आते ना कॉलोनी में अगर कुत्ते बढ़ जाएं क्या होता, फिर लड़ाई करते हैं, लोगों को काटते हैं, हम फोन करते हैं एमसीडी को भैया कुत्ते उठा के ले जाओ, इतने बढ़ गए संख्या, चाइना में तो दिखाई नहीं देते, खा लेते हैं वो लोग। तो संख्या बढ़ रही है कुत्ते बिल्लियों की, है कि नहीं। तो उसी तरह समाज में जब अनट्रेन लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो कलेश ही कलेश है, भरी हुई है कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस लटके पड़े क्योंकि नीचे सेटिस्फाइड नहीं थे, निचली अदालत जुडिशरी में, फिर हाई कोर्ट, आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, बताना जीवन बिता रहा अपना सुप्रीम कोर्ट में। मैं एक तो ऐसा आदमी जिसके ऊपर एक रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा लग गया, कितने का, एक रुपए का टैक्स, हाईकोर्ट चला गया उसके लिए, वो आज भी लड़ रहा है, वो कहता कितना ही पैसा खाना चाहिए, वो एक रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगाया, नहीं कहा ये भगवान। एक व्यक्ति ने ऐसा केस ठोक दिया, लड़ता रहा आखिरी तक, लड़ूंगा जी सत्य का पालन करूंगा आखिरी तक लड़ूंगा, कुछ रुपयों के लिए 200-250 रुपए के लिए मर गया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया उसका। वो बड़े टाइम बाद आया, फिर लगे हुए लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे, निचली अदालत को तो गिन ही नहीं सकते, इतने केसेस पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने अभी बढ़ाए 3 जज, कि चलो 3 जज और बढ़ा दे, हमारा भी अटका पड़ा सुप्रीम कोर्ट में अभी तक। प्रॉपर्टी कब्जा ली बेंगलोर केस में, और आज भी हम लोग लगे हैं, भैया दे दो वापिस, हाईकोर्ट ने कहा जी ले लो ये तो खराब आदमी है, तुम लो तुम्हारा सब कुछ ठीक है, वो कहते हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नाक की बात है जी, अब सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है मामला। बताइए इतना ज्यादा अनट्रेंड लोग है ना जी, भारी संख्या में, तो कैसे बचेंगे इतनी ऐसी स्थिति में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेते हैं, अभी मोदी सरकार ने लाल किले से बोला जनसंख्या में नियंत्रण करो, देशभक्ति है भी। प्रभुपाद जी कह रहे नहीं नहीं ये सब बेकार की चीजें हैं, चाहे संतान मदद करो या ऐसे वीर स्खलित करो, सब का सब पाप है। तो फिर संख्या कैसे कंट्रोल होगी भाई, तो चाणक्य पंडित जी इसका जवाब देते हैं, कहते हैं भैया नाचा चंद्र सम्मोहन, वो कह रहे हैं एक चंद्रमा इज इनफ, सैकड़ों तारों की आवश्यकता नहीं है। तारे क्या रोशनी देंगे, चंद्रमा देखिए सबको रोशनी देता है, शीतलता प्रदान करता है। एक चंद्र तमोहंती नाचा तारे गण रूपी। फिर कह रहे हैं इसी तरह गुणी पुत्रों, एक अगर गुणी पुत्र हो जाए घर में तो क्या होता है, नाचा तारे शतरूपी, सौ सौ पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। आज पांच पांडवों की जयकार हमेशा होती है। रोहिणी में भी जो हम लोग डोनेशन सेवा है उसमें हम लोग नकुल सेवा, सहदेव सेवा, अर्जुन सेवा, भीम सेवा, युधिष्ठिर सेवा, इन सब से उनके नाम लिख रहे हैं। दुशासन सेवा थोड़ी है कोई उसमें, दुर्योधन सेवा कोई नहीं, सौ पुत्र थे लगा लो भी उनका भी नहीं लिख सकते चाहे कितने ही हो। क्यों, क्योंकि ऐसे सौ पुत्रों की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुणी पुत्र अगर एक भी होगा पूरे कुल को तार देगा। जैसे एक सुवृक्षेना एक अनपिना सुवृक्षेना, एक सुंदर सा सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष अगर जंगल में है तो पूरे जंगल को क्या करता है, सुगंधित कर देता है। और उसी तरह एक शुष्क वृक्ष के ना, और अगर एक सूखा पेड़ है वो अपने घर्षण से आग लगा तो हरे भरे जंगल में भी क्या करता है, वो आग लगा देता है। अब लोग संतान उत्पन्न करते हैं, मंदिर आए थे प्रभु जी हमारे बच्चे को सुधारो, अरे सुधारो हम कैसे सुधारें इसको, कितनी तपस्या की थी पैदा करने से पहले, नहीं जी पहले सुनी की थी बाद में तपस्या की थी, हाँ तो बाद में करो फिर तपस्या, पहले तपस्या नहीं करते, भगवान बता रहे तुमने तपस्या की इसलिए मैं आया। आजकल लोग बाद में तपस्या करते हैं, पहले तो प्लानिंग करते हैं, किस चीज की प्लानिंग, संतान की, बिल्कुल वो भी प्लानिंग करते हैं। यहां कहते हैं कि भाई जन्म मृत्यु से बाहर निकले, वो कहते हैं नहीं ये संतान लानी लानी, पैसे हो गए कि नहीं हो गए, इसको पाल पाएंगे कि नहीं, खर्चा देख लेंगे स्कूल कौन सा एडमिशन, इतना खर्चा हो गया महीने का, चलो जी संतान ले आते हैं। संतान ले आए घर पे, अब शुरू होती है माता पिता की तपस्या पैदा करने के बाद, चल भैया करो मेंटेन अब इसको, इसका स्कूल, इसका कॉलेज, इसका ट्यूशन, इसका होमवर्क करवाना, इसका ये करना और वो करना, जन्म के बाद तपस्या शुरू हो रही है। और ढंग से तपस्या पहले कर ली होती तो आराम से पैदा होते हुए मंदिर ज्वाइन कर लेता, कोई खर्चा नहीं था। है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है संतान के उत्पन्न करने के पीछे भाव चाहिए, तपस्या चाहिए और उद्देश्य चाहिए। कोई लोग कह सकते हैं भाई हमारा तो टाइम निकल गया, हमको क्यों सुना रहे हो ऐसा लेक्चर। भैया तुम्हारा टाइम निकल गया, तुम्हारे बच्चे तो हैं। नहीं भाई उनका भी टाइम निकल गया। अरे तो उनके तो होंगे और किसी को तो बता सकते हैं। जब तक समाज में इस चीज की शिक्षा नहीं मिलेगी, वैदिक संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जाएगी और हम केवल इस सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन के बेसिस पर जिएंगे तो सब लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह ही नरकों में जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रचार की बहुत जरूरत है। जिनको ज्ञान हो गया चलो जी शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत संस्कार रह गए हैं पुराने घरों में, कुछ अभी भी माताएं पिता हैं तो बहू के प्रेग्नेंट होते बोलते बेटा थोड़ा मंदिर पूजा पाठ कर लेकर, वो भी ऐसे करती है क्या, और फिर टीवी देखती है पूरा दिन या वो मोबाइल पर रहती है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत सास जबरदस्ती कुछ करवा ले तो इसलिए जब संतान भी बाहर आती है तो वो तो थोड़ी बहुत वाली होती है कि मंदिर के सामने जाते ऐसे ऐसे कर लेगी, बस इतना ही करेगी फिर वो, और कुछ नहीं करेगी। हम मिलते हैं ना लोग से ऐसे तो होते सारे, मंदिर के नाम पर बिल्कुल नहीं। जिनके घर में थोड़ा बहुत डिवोशन है उनके बच्चे, ये बड़ी संख्या कम है, एग्जाम के टाइम पर आ जाएंगे, जा मथा टेक के आ जा, फिर बच्चे आएंगे पेन लगवाएंगे भगवान के चरणों में, अपना रोल नंबर लगवाएंगे, शायद हो जाए, मम्मी पापा इतने सुबह सुबह धूपबत्ती करते हैं शायद कुछ हो जाए हमारा भी, तो वो भी बड़े कम परसेंटेज है, बाकी तो आते नहीं, पूरा स्कूल आता है कि नहीं आते कोई। अभी स्कूलों में आजकल ट्रेंड चल रहा है इस कौन मंदिर ले जाओ बच्चों को, तो थोड़ा बहुत यहां हरे कृष्णा करके चले जाते हैं, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टेंट हैमरिंग चाहिए। यहां सुबह से लेकर शाम तक बैठे भक्तों को भी भावना भावित होने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, और आप सो रहे हम लोग पार्ट टाइम कुछ कर लेंगे, साल में एक बार आएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो प्रचार की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की चेतना को बदलने की जरूरत है, पूरा संस्कार बदलना, समाज बदलने की जरूरत है। इसलिए किसी को घर नहीं बैठना चाहिए, जिनको भी समझ आ गई निकल जाना चाहिए कहां, अरे पूरे समाज को बदलने के लिए गांवों की तरफ चले जाओ। हम सोचते हैं हम फार्म कम्युनिटी बनाएंगे, एक छोटा सा लैंड लेकर उसके अंदर ये करेंगे ये करेंगे, इतने से कुछ नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, अरे गांवों में घुस जाओ ना, बना बनाया गांव मिल गया तुम्हें, गांवों में घुस जाओ, प्रवचन करो, वहीं की खिचड़ी खाओ, उनको खिलाओ, लेक्चर दो, वैदिक संस्कृति समझाओ कि भैया शहर जाना ठीक नहीं है, घरों में ताले लगे हुए। अब यहां पर दिल्ली में है ना, सब लोग किसी से बात करो, कहां से पूछे, जिंद से, कहां से हो जी, हिसार से, कहां से हो जी, कहां से, कभी खेती करी, हां जी खेती करी, खेती करते थे बस अभी आए जी, अब तो ये लोहा लंगड़ बेच रहे हैं यहां। वो 95 साल 90 साल जीते थे, यहां आके 60-60 साल में मर रहे, 40 में आर्टिस्ट ब्लॉक, 50 में 3 स्टंट लगे, उसके बाद खत्म। क्यों जी ऐसा क्यों, त्याग क्यों दिखाया आपने, कहते जी वो हॉस्पिटल बन गए थे शहरों में तो उनका कौन खर्चा देखता, तो इसलिए हम गांवों से इधर आ गए मरने के लिए, जल्दी मरने के लिए। बड़ा अजीब समाज, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। मैं उस दिन जब कर रहा था पार्क में, एक बार कितने लेक्चर में बोला मैंने, जब करते मैंने बैंगन देखा पेड़ों के अंदर नीचे, बैंगन, वो बैंगन जिसकी सब्जी खाते हम, बैंगन दिखाई दिया, घिया दिखाई दिया, लौकी, अरे मैंने कहा ये तो यहां से उगता है, शहर वालों को पता नहीं उगता कहां से, वो तो सब्जी वाला आता वो लाता है, दूध कहां से आता है बताया, भैया लाता है, अरे भैया कहां से लाता है, वो डेयरी से लाता है, अरे डेयरी कहां से लाती है ये नहीं मालूम, शहर वालों को पता नहीं कहां से आता, अरे जो ये चीज उगती यहां से तो ये भाग क्यों रहे लोग सुबह शाम इधर उधर, ये तो इतनी आसानी से उग जाता, तो जमीन लो, उगाओ खाओ, बाकी टाइम भजन करो। तो जी नमक भी तो डालना होता है, हाँ तो नमक के लिए पैसे चाहिए, हाँ भाई हाँ, तो नमक, ये जो नमक और मिर्च है ना, जीवन भर मिर्च लगाएगा, संघर्ष रहती रहेंगे, और फिर स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में 3 BHK 4 BHK के चक्कर में फंसे रहो यहां पर, ये हालत है। नहीं जी सक्सेस इसको बोलते हैं, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप हो ही नहीं, फिर आप समाज में हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो एग्जाम्पल चाहिए, ऐसे सेट करो एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, माता पिताओं ने अपने बच्चों को ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग के लिए मंदिर भेज दिया, सेट किया ना एग्जाम्पल, हम नहीं ले रहे थे, हमने कहा नहीं चाहिए, कहते नहीं हमें मालूम है समाज में बिगड़ जाएगा, जो संघर्ष हम कर रहे हैं खून के आंसू हम रोने, इसको भी रोने पड़ेंगे, इसको रखो आप, इसको सिखाओ, इसको बताओ आगे, तो आते ट्रेनिंग के लिए आते। उसी तरह जब ये लोग कर सकते हैं तो उसी तरह सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के कंसेप्ट जीवन में उतार कर हम लोग भी कर सकते हैं। भूल जाओ कि जीवन में 1 लाख का ही पैकेज चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मतलब बेयर मिनिमम में रहकर दिखाइए। हमारे यहां भक्त हैं कुछ ऐसे जो 4-5 जोड़ी कपड़ों में जीते हैं, चाहे हो सकता है उनकी कोठी हो, भगवान भगवान में बाकी दान में लगाते सब कुछ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर एंटर किए हो तो अपने को नहीं पालना खाली, इसलिए तो नरकों में मार पड़ती है, ब्रह्मचारियों को भी पालना है, वानप्रस्थियों को भी पालना है और सन्यासियों को भी पालना है, ये उसकी ड्यूटीज है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज का वहन नहीं कर रहा इसलिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं रहे, वानप्रस्थ होते ही नहीं है और सन्यास एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि गृहस्थ अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, क्योंकि गृहस्थी का काम भूल गया वो, तो जब इन सबको पालता तो उसको गृहस्थी को मालूम होता कि भैया ये ब्रह्मचारी कहां से आते हैं, हमारे परिवारों से तो ब्रह्मचारी आते हैं, और फिर मेरे को इस विवाह के बाद संतान उत्पन्न करने के बाद इन 3 आश्रमों को पालने के बाद मुझे भी तो क्या लेना है, अब वानप्रस्थ लेना तो मुझे कौन पालेगा, तो इसलिए वो वानप्रस्थी को पालता है ताकि दूसरे का नंबर है तो मुझे भी पाले, दूसरे के उस पर मैं वो रहूंगा। तो इसलिए पूरा का पूरा कल्चर दूषित हो गया, केवल और केवल अब सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी भोग बेस्ड सेक्स एंजॉयमेंट ये सब बस ये एंजॉयमेंट ही है बस, और उसके अलावा बड़ी गाड़ी 3 BHK रूम और एक डिग्री, एक लड़का एक लड़की बच्चा बच्ची, बस ये है जीवन सर, इससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहा व्यक्ति। इसलिए कहा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्र था, कि कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद होगी और इनका भाग्य भी मंद होगा और हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो आइए हम सब हाथ बढ़ाएं, इसी समाज की तरफ बढ़ने के लिए नहीं, इस वैदिक कल्चर को वापस लाने के लिए। कोई और नहीं शुरू करेगा, मुझे ही शुरू करना है। अपने से मुझे लोगों को दिखाना है कि यस, किस प्रकार कम से कम में जिया जा सकता है। अभी मुझे कल किसी का फोन आया कि प्रभु जी, मेरे पास इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे ओयो वाले जी है ना, ओयो होटल्स वाले कह रहे हैं कि जी आप हमको 260,00,000 रुपए लगाओ, इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर होटल बनाओ और हम आपको इतना लाख रुपया की गारंटी देते आएगा महीने का। तो कहते जी 60,00,000 जो चाहिए उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, और जो 3-4,00,000 रुपया महीना आएगा उसमें 1.5-2 लाख तो उसमें चला जाएगा, बचेगा 1,00,000। और फिर तो मैंने कहा, इतनी लाखों की बात हो रही है, घर में तुम 3-4 लोग हो, बिजनेस तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा, तुम प्रॉपर्टी के वो कर रहे हो, तो मैंने कहा इतनी भाग दौड़ किस लिए। मैंने कहा अगर 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप निकालो, 5-7 करोड़ का ब्याज कितना होता है महीने का, है जी 4-5 लाख रुपए वैसे ही आने लगा। जो पैसा आपका है वो अभी भी पड़ा है आपके पास ही, है कि नहीं, और 4-5 लाख रुपए हो गया। घर का खर्चा कितना, 25-30 हजार रुपए, बाकी पैसे का क्या कर रहे हैं, रोहिणी मंदिर, बाकी से सेविंग करो, इधर लगाओ उधर लगाओ, परेशान है लोग। अरे मैंने कहा भाई, लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं ना किस लिए प्रभु जी, ताकि कल को हॉस्पिटल में एडमिट, कौन देखेगा प्रभु जी, प्रैक्टिकल बनो ना प्रभु जी, हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गया तो कौन देखेगा, कौन देखेगा, सारी दुनिया देखेगी भाई। 1,00,000 रुपए की एफडी करा लो, 1,00,000 रुपए की एफडी कराएंगे तो कितना ब्याज आता महीने का, 800 रुपया, 700 रुपया, साल का कितना हो जाएगा, 700 रुपया, 800 रुपया, 8,500। अच्छी से अच्छी पॉलिसी हेल्थ की सालाना 6,000 रुपए मांगती है आपसे, 5-10 लाख का आपको वो देती है कवर, पूरा परिवार कवर्ड। क्या करा आपने, 1,00,000 रुपया बैंक में डाल दिया, पूरा फैमिली कवर्ड। नहीं पूछो, और उसके अलावा भी तो है, और क्या है बताओ प्रभु जी, उसके अलावा ये है कि कल को फ्यूचर में क्या होगा। अरे फ्यूचर में क्या होगा, पहले तो मोदी सरकार ही सबको 3-3, 4-4 हजार रुपये दे रही है आजकल रिटायर पे। उसके अलावा आप 1-2 लाख रुपए वो जो आज तक कमाए उसको क्या करो, उसको भी बैंक में डालो, उसका इंटरेस्ट निकालो, और उसके इंटरेस्ट से अपना क्या इंश्योरेंस की पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी के प्रीमियम भरते रहो, वो भी हो जाएगा। तो जीवन को अगर सफल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, आसान बनाना है, तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के बेसिस पर जिए। कुछ थोड़ी सी ट्रांजेक्शन ठीक ढंग से कर लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक केवल गधों की तरह भागकर ही घास मिलती है, ऐसा नहीं होगा। गधा भी तो ईश्वर से प्रभु बात करते हैं ना कि गधा सुबह से लेकर शाम तक इतना भार उठाता है, धोबी उसको खूब इधर से इधर ले जाता है, पिटता करता है, ये करता है वो करता है, फिर उसको शाम को थोड़ी सी घास देता है, वहीं नदी के कोने से थोड़ी घास दे खा ले, बड़ा शुक्रगुजार महसूस करता है वो, कहता मैं मिस्टर गधा इतनी मेहनत करता हूं तब जाके रोटी खाता हूं, खुद गर्ज हूं, है ना। अब भाई तू ये पीठ से सामान गिरा दे, जंगल में चला जा, पेड़ के नीचे भी घास मिलेगी, पेड़ के ऊपर भी खा ले, कुछ भी खा ले, पूरा जिंदगी खा, लेकिन नहीं, संघर्ष करके खाने का मजा ही कुछ और है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने ऑटो के पीछे लिखा, जीवन एक संघर्ष है, तो करो संघर्ष फिर। तो इसलिए अगर हम लोग वैदिक संस्कृति के ढंग से पालन करें, इन भागवत में श्रवण करने के जीवन अपना इस तरह से मोल्ड करें, तो बहुत आसानी से जिया जा सकता है, टेंशन फ्री। तो जो अधिक टेंशन लेना चाहता है वो अधिक संसार में घुसे, और जो टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता है वो हरे कृष्णा करें। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है, हाँ जी प्रभु जी, माइक दे दो जरा उनको, माइक ले लो।
कुछ बातें आपने बताई नहीं इसमें ना, अभी जो खर्चा वगैरह आपने बताया ना, जो बच्चों की फीस है आजकल 15,000 महीना फीस है बच्चों की, आज कम से कम।
सही बात है, आप संस्कृति में डालो ना, 50,000 फीस है महीने की।
नॉर्मल मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 10 से 15,000 फीस है बच्चों की।
नॉर्मल इसलिए कर रहे हो आप बात क्योंकि आप नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हो, उन सबके बच्चे 10 से 15 वाले में पढ़ते हैं। जिस दिन यहाँ पंजाब 22 इसमें आ जाओगे ना, ये 78 नंबर रोड पे, तो वहां पर 40-50 हजार का स्टैंडर्ड है। फिर आपको कि नॉर्मल तो 40-50 हजार फीस तो होती है प्रभु जी। और फिर आप थोड़ा सा, कहने का मतलब है कि जिस तरह के एनवायरमेंट में रहेंगे, जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, आप मायापुर के भक्तों का संग करो ना, डाल दो उसको गुरुकुल में, हो गया खत्म काम।
भाभी 10,000 रुपए लगते हैं महीने के,
कर देंगे हम फ्री कर देंगे। और बताओ, अगर नहीं दे सकते तो फ्री करवा देंगे। यस हाँ जी, मेरे आपके बच्चों को जरूर भेजेंगे, फ्री में नहीं भेजेंगे क्योंकि आप कमाते हो। ठीक है कि नहीं? देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा इस प्रकार दिक्कत में है तो हम लोग बड़े सारे स्कूल्स खोल रहे हैं, बड़ी सारी योजनाएं हैं हमारी, और उन योजनाओं में कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं, बिना पैसे के भी लोग पढ़ रहे हैं, पुस्तकें आसानी से मिल जाती हैं, आराम से पढ़ा जाता है, नेशनल ओपन स्कूल से सब कुछ किया जा सकता है, होम स्कूलिंग कराई जा सकती है, अपने स्कूलों में बिठाया जा सकता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन पहले ये निकालना पड़ेगा कि बनाना क्या चाहते हो बच्चे को, पहले बताओ। अगर तो उसको समाज का पढ़ा लिखा गधा बनाना है तो फिर सब कुछ कम है, और अगर उसको सुंदर भक्त बनाकर जन्म मृत्यु से बाहर निकालना है तो यहां भेज दो।
जी, भक्त बनाना भी हमारे बस का नहीं है ना, बच्चे काम आने।
कारण क्या है कि हम भी खुद बड़े बात में आए ना भक्ति में, तो संस्कार वो जो मैंने सिखाया वो सब नहीं है,
बच्चे नहीं मानते हैं ना। हम बोले जितना ही बोले,
ओबामा को अलग से बताऊंगा उसका कैसे प्लान है बच्चों को मनाने का, उसका अलग से लेक्चर है। यस प्रभु,
हरे कृष्ण भाई। भाई जैसे आपने बताया गर्भधारण संस्कार के बारे में, तो जो कम्युनिटी हम देख रहे हैं ब्रह्मचारी वगैरह हैं, वो तो इनके पेरेंट्स ने भी, मुझे नहीं ऐसा लगता कि हाँ भाई इस, क्योंकि 15-20 साल तो उन्होंने ऐसा कुछ संस्कार वगैरह नहीं किए होंगे, तो ये फिर क्या उनके पिछले जन्म, या फिर हर कोई सोचे कि हाँ भाई जब ये बन गए तो फिर
संस्कार नहीं किए होते, ऐसी चेतना नहीं होती, हम नहीं जानते। बताया जाता है कर्मणा देव नेत्रेणा, सब कुछ भगवान के निरीक्षण में होता है और हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। तो और फिर भक्तों की बड़ी कृपा का, क्योंकि भगवान की कृपा भगवान के भक्तों के द्वारा मिलती है। अगर आपके पास योग्यता नहीं भी है तो फिर भी भगवान के भक्त योग्यता देने जा रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, इसलिए योग्य बना रहे हैं लोगों को। तो इसलिए जो नहीं कर पाए ऐसी स्थिति में, तो अब जुड़ जाएं भक्तों के संग तो योग्यता बन जाएगी, और योग्यता बनने के बाद भक्ति करें। तो इसका भी क्रमिक विकास होता है भक्ति का भी। तो अगर एक जन्म में नहीं भी करा, सारे रिजल्ट एक जन्म में मत देखो, 10 साल में मत देखो, हो सकता है एक आधा जन्म और लग जाए, तो इस तरह से होता है। ठीक, शिला प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।